दोनों ने अपने अपने पक्ष को स्थिर किया। अंत में श्रद्धा का पलड़ा भारी रहा। इसके बाद शीलमणि ने अपने वृत्तांत सुनाया। संतानोत्पत्ति के निमित्त कौन कौन से यत्न किए, किन किन दाइयों को दिखाया, किन किन डॉक्टरों से दवा कराई, यहाँ तक कि वह श्रद्धा को अपने गर्भवती हो जाने का विश्वास दिलाने में सफल हो गई, किंतु महाशोक, सातवें महीने गर्भपात हो गया। सारी आशाएं धूल में मिल गई। श्रद्धा ने सच्चे हृदय से संवेदना प्रकट की, लेकिन फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। श्रद्धा ने पूछा, अब ब्यूटी साहब का क्या इरादा है? शीलमणि, अब तो इस्तीफा दे कर आए हैं और बाबू प्रेम शंकर के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें इन पर असीम भक्ति है। पहले जब इस्तीफा देने की चर्चा करते तो समझती थी काम से जी चुराते हैं, राजी न होती थी। इन 3 वर्षों में मुझे अनुभव हो गया कि इस नौकरी के साथ आत्मरक्षा नहीं हो सकती। जाति के नेतागण प्रजा के उपकार के लिए जो उपाय करते हैं, सरकार उसी में विघ्न डालती है, उसे दबाना चाहती है। उसे भय होता है कहीं यहाँ के लोग इतने उन्नत न हो जाए कि उसका रूप न माने, इसीलिए वो प्रजा के भाव को दबाने के लिए उसका मुंह बंद करने को नए नए कानून बनाती रहती है। नेताओं ने देश को दरिद्रता के चुंगल से छुड़ाने के लिए चरखों और करघों की व्यवस्था की, सरकार उसमें बाधा डाल रही है। स्वदेशी कपड़ों का प्रचार करने के लिए दुकानदारों और ग्राहकों को समझाना अपराध ठहरा दिया है। नशे की चीज़ों का प्रचार कम करने के लिए नशेबाजों ठेकेदारों से कुछ कुछ कहना सुनना भी अपराध है। और पिछले सालों जब यूरोप की लड़ाई हुई थी तो सरकार ने प्रजा से कर्ज लिया। कहने को तो कर्ज लिया था, पर असल में जरूरी टैक्स था। अधिकारियों ने दीन दरिद्र प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, तरह तरह के दबाव डाले, यहाँ तक कि उन्होंने हल बैल बेचकर सरकार को कर्ज देने पर मजबूर किया। जिसने इनकार किया उसे या तो पिटवाया गया या कोई झूठा इल्जाम लगाकर फंसा दिया। बाबूजी ने अपने इलाके में किसी के साथ सख्ती नहीं की, कह दिया जिसका जी चाहे कर्ज दे, जिसका जी चाहे न दे। नतीजा यह हुआ कि और इलाकों से तो लाखों रुपए वसूल किए गए, इलाके में इनके बहुत कम मिला। इस पर जिले के हाकिम ने नाराज होकर उनकी शिकायत कर दी। उसने यह अहदा छीन लिया, दर्जा घटा दिया गया। जब मैंने यह हाल देखा तो आप ही जिद करके इस्तीफा दिलवा दिया। जब प्रजा की कमाई खाते हैं तो प्रजा के फायदे का ही काम करना चाहिए। यह क्या कि इसकी कमाई खाएं उसी का गला दबाएं, यह तो नमक हरामी है, घोर निष्ठा। यह तो वह करें उसकी आत्मा मर गई है, जिसे पेट पालने के सवाल लोग पर लोग की कुछ चिंता न हो, जिसके हृदय में जाति प्रेम का लेश मात्र है, वह ऐसे अन्याय नहीं कर सकता। भला तो होता है सरकार का, रोब और बल तो उसका बढ़ता है, जेब तो अंग्रेज व्यापारियों को भरते हैं और पाप के भागी होते हैं या पेट के बंद नौकर। यह स्वार्थ के दास अधिकारी, और फिर हमें नौकरी की परवाह ही क्या है। घर में खाने को बहुत है, दो चार को खिलाकर खा सकते हैं। अब तो पक्का इरादा कर गया है कि यहाँ बाबू प्रेमशंकर के साथ रहें और अपने से जहाँ तक हो सके प्रजा की भलाई करें। अब यह बताओ तुम कब तक रूठी रहोगी, क्या इसी तरह रो रो कर उम्र काटने की ठान ली है? श्रद्धा, प्रारब्ध में जो कुछ है उसे कौन मिटा सकता है? शील, कुछ नहीं, यह तुम्हारी मिथ्या व्यर्थ की टेक है। मैं अब की तुम्हें घसीट दे चलूंगा, इस उजाड़ में मुझसे अकेले न रहा जाएगा। हम और तुम दोनों रहेंगे तो सुख से दिन कटेंगे, अवसर पाते ही मैं उन महाशय की भी खबर लूंगी। संसार के लिए तो जान देते फिरते हैं और घर वालों की खबर भी नहीं लेते, जरा सा प्रायश्चित करने में क्या शान घट जाती है? श्रद्धा, तुम अभी उन्हें जानती नहीं हो, बस सब कुछ करेंगे पर प्रायश्चित न करेंगे, वो अपने सिद्धांत को न तोड़ेंगे, इस पर भी वो मेरी ओर से निश्चिंत नहीं है। ज्ञान शंकर जब से गोरखपुर रहने लगे तब से वो प्राय रोज यहाँ एक बार आ जाते हैं, अगर काम पड़े तो नया रहने में भी आपत्ति न होगी, लेकिन अपने नियम उन्हें प्राणों से भी प्रिय है। शीलमणि ने आकाश की तरफ देखा तो बादल घिर आए थे, घबरा कर बोली, कहीं पानी न बरसने लगे, अब चलूंगी। श्रद्धा उसे रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन शीलमणि ने न माना। आखिर उसने कहा, जरा चल कर उनके आंसू तो पोंछ दो, बेचारी तभी से रो रही होगी। शीलमणि, रोना तो उसके नसीब में लिखा, अभी क्या रोई है, ऐसे आदमी की यही सजा है, नाराज होकर मेरा क्या बना लेगी, रानी हो तो अपने घर की होगी। शीलमणि को विदा करके श्रद्धा झेपती हुई गायत्री के पास गई। वह डर रही थी कि गायत्री मुझ पर संदेह न करने लगे कि मेरा सारी करतूत इसी की है, इसलिए डरते डरते अपराधी के भांति कमरे में कदम रखा। गायत्री ने प्रार्थी दृष्टि से उसे देखा तो कुछ बोली नहीं, बैठे हुए कुछ लिख रही थी, मुख पर शोक के साथ दृढ़ता की झलकती हुई थी। कई मिनट तक वो लिखने में ऐसी मगन थी मानो श्रद्धा के आने का उसे ज्ञान न था। सहसा बोली, बहन अगर तुम्हें कष्ट न हो तो जरा माया को बुला दो और मेरी महरियों को भी पुकार लेना। श्रद्धा समझ गई कि इसके मन में कुछ ठन गई, कुछ पूछने का साहस न हुआ, जाकर माया और महरियों को बुलाया। एक क्षण में माया आकर गायत्री के पास खड़ा हो गया। महरियाँ बाग में झूल रही थी, माधव का महीने तक घटा छाई थी, कजली बहुत सुहानी लगती थी। गायत्री ने माया को सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम जानते हो कि किसके लड़के हो? माया ने कौतूहल से कहा, इतना भी नहीं जानता। गायत्री, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ, जिससे तुम मुझे मालूम हो जाए कि तुम मुझे क्या समझते हो। माया पहले इस प्रश्न का आशा न समझता था, इतना सारा पाकर सचेत हो गया, बोला, पहले लाला प्रज्ञान शंकर का लड़का था, अब आपका लड़का हूँ। गायत्री, इसलिए तुम्हें प्रत्येक विषय में ईश्वर के पीछे मेरी इच्छा को मान्य समझना चाहिए। माया, निसंदेह, रहते। बाबू ज्ञान शंकर को तुम्हारे पालन पोषण शिक्षा दीक्षा से कोई संबंध नहीं है, यह मेरा अधिकार है। माया, आपके ताकीद की जरूरत नहीं, मैं स्वयं इनसे दूर रहना चाहता हूँ। जब से मैंने अम्मा को अंतिम समय उनकी सूरत देखते ही चीख कर भागते देखा, तभी से उनका सम्मान मेरे हृदय से उठ गया। गायत्री, तो तुम उससे कहीं ज़्यादा चतुर हो, इतना मैं समझती थी। मैं आज बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रही हूँ, कुछ पता नहीं कब लौटूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बाबू प्रेम शंकर की निगरानी में रखूँ। ये मेरी आज्ञा है कि तुम उन्हें अपना पिता समझो और उनके अनुगामी बनो। मैंने उनके नाम में पत्र लिख दिया है, इसे लेकर तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी शिक्षा की उचित व्यवस्था कर देंगे। तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम्हें वे आराम और जरूरत के आयोजन भी करेंगे। तुमको थोड़े ही दिनों में ज्ञात हो जाएगा कि तुम अपने पिता से कहीं ज़्यादा सुयोग्य हाथों में हो। संभव है कि लाला प्रेम शंकर को तुमसे उतना प्रेम ना हो जितना तुम्हारे पिता को है, लेकिन इसमें जरा भी संदेह नहीं कि उन्हें अपने आने वाले कर्तव्यों का पालन करने के लिए जितनी क्षमता उनके पास प्राप्त हो जा सकती है, तुम्हारे आचार विचार चरित्र का जैसा उत्तम संगठन वह कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मुझे आशा यह है कि वह इस भार को स्वीकार करेंगे। इसके लिए तुम और मैं दोनों ही उनके बाध्य होंगे। यह दूसरा पत्र मैंने बाबू ज्ञान शंकर को लिखा है। मेरे लौटने का तक वह रियासत के मैनेजर होंगे। मैंने उन्हें ताकीद कर दी कि बाबू प्रेम शंकर के पास प्रति मास 2000 रुपये भेज दिया करें, यह पत्र डाकखाने भिजवा दो। इतने में चारों महरियाँ यात्री ने उनसे कहा, मैं आज बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रही हूँ, तुम ऐसे कौन मेरे साथ चलती है? महरियों ने एक स्वर से कहा, हम सब की सब साथ चलेंगे। नहीं, केवल मुझे एक की जरूरत है। गुलाबू, तुम मेरे साथ चलोगी? सरकार जैसा हुक्म दे। बाल बच्चों को महीनों से नहीं देखा तो घर जाओ। तुम चलोगे केसरी? कब तक लौटना होगा यह नहीं कह सकती, मुझे चलने में कोई उजूर नहीं है, पर सुनती हूँ कि वहाँ का पहाड़ी पानी बहुत लगता है, तो तुम भी घर जाओ। तुम चलोगे अनसुईया? सरकार मेरे घर कोई मर्द मानुस नहीं है, घर चौपट हो रहा है, वहाँ चलूंगी चटाक पर दाना न मिलेगा, तो तुम भी घर जाओ। अब तो तुम्हारी रह गई राधा, तुमसे भी पूछ लूँ चलोगे मेरे साथ? हाँ सरकार, चलूंगी, आज ही चलना होगा, जब सरकार का जी चाहे तब चलें, तुम्हें 20 बीघे मुआफ़ी मिलेगी। तीनों मरियों ने रज्जित होकर कहा, सरकार चलने को हम भी तैयार हैं, आप दे दिया खाती हैं तो साथ किसकी रहेंगी? नहीं, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं, मेरे साथ अकेली राधा रहेगी। तुम सब कृतघ्न हो, तुमसे अब मेरा कोई नाता नहीं। यह कहकर गायत्री यात्रा की तैयारी करने लगी। राधा खड़ी देख रही थी, पर कुछ बोलने का साहस न होता था। ऐसी दशा में आदमी अव्यवस्थित सा हो जाता है, जरा सी बात पर झुंझला पड़ता है और जरा सी बात पर प्रसन्न हो जाता है।